लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि कलीसियाई समुदाय उन युवा लोगों की इच्छाओं और आशंकाओं का स्वागत करें जो पौरोहित्य और धार्मिक जीवन में यीशु मसीह के मिशन की सेवा करने की बुलाहट महसूस करते हैं। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है रविवार ये आराधना विधि चिंतन भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओ, दुनिया का हर मानव अपने में धनी होने की चाह रखता है, जो अपने में कोई बुरी बात नहीं है। इस दुनिया में जीवन निर्वाहन के लिए धन अति आवश्यक है, लेकिन किसी भी कीमत पर धन अर्जन की चाह, उसके लिए कुछ भी कर जाने की धुन मानव में धन के प्रति क्षुब्धा को व्यक्त करती है। वर्तमान परिवेश में मानवीय सामाजिक परिस्थितियां, जहां हम कई तरह की बुराइयों और नए नए अपराधों की नई कड़ियों को रोज दिन पनपता सुनते हैं, जिसके आधार पर यह कहना कि मानव में धन प्राप्ति की चाह ने दुनिया को बुराइयों के गर्त में धकेल दिया है, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। दुनिया में हो रहे रंगीन संगीन अपराध आज किसी न किसी तरह से धन संपत्ति से जुड़े हुए हैं, और जब तक धन की भूख मानव में व्याप्त होगी, अपराध की दुनिया जगमगाती रहेगी। श्रोताओं, वर्ष के 6वें सामान्य रविवार आराधना विधि चिंतन हेतु लिए गए सुसमाचार पाठ में हम यीशु ख्रिस्त को वर्तमान दुनिया के मनोभावों के ठीक विपरीत अपनी शिक्षा में दरिद्रता को धन्य घोषित करते हुए सुनते हैं। आइए हम सुसमाचार में प्रभु वचनों का श्रवण करते हुए अपने में इस बात पर चिंतन करें कि दरिद्र होने का अर्थ हमारे लिए क्या है। क्या हम अपने जीवन में दरिद्रता को किस मानसिकता से लेते और जीते हैं? क्या दरिद्रता हमें यीशु के निकट आने में मदद करती है और हमें दूसरों के संग अपने जीवन को संयुक्त करने हेतु प्रेरित करती है?
ईसा उनके साथ उतरकर एक मैदान में खड़े हो गए। वहाँ उनके बहुत से शिष्य थे और समस्त यहूदिया तथा यरूशलेम का और समुद्र के किनारे तीरुस तथा सीदोन का एक विशाल जनसमूह भी था, जो उनका उपदेश सुनने और अपने रोगों से मुक्त होने के लिए आया था। ईसा ने अपने शिष्यों की ओर देखकर कहा, धन्य हो तुम जो दरिद्र हो, स्वर्ग राज तुम लोगों का है। धन्य हो तुम जो अभी भूखे हो, तुम तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जो अभी रोते हो, तुम हंसोगे। धन्य हो तुम जब मानव पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे, तुम्हारा बहिष्कार और अपमान करेंगे और तुम्हारा नाम घृणित समझकर निकाल देंगे। उस दिन उल्लसित होवो और आनंद मनाओ, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। उनके पूर्वज नबियों के साथ ऐसा ही किया करते थे। धिक्कार तुम्हें जो धनी हो, तुम अपना सुख चैन पा चुके हो। धिक्कार तुम्हें जो अभी तृप्त हो, तुम भूखे रहोगे। धिक्कार तुम्हें जो अभी हंसते हो, तुम शोक करोगे और रोवोगे। धिक्कार तुम्हें जब सब लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। उनके पूर्वज झूठे नबियों के साथ ऐसा ही किया करते थे।
श्रोताओं, सुसमाचार के सुमधुर वचन हमें यीशु ख्रिस्त के मनोभावों को अपनाने में मदद करे, जो धनी होते हुए भी हमारे खातिर निर्धन होने का चुनाव करते हैं। जिससे हम उनकी निर्धनता में अपने को शामिल करते हुए अनंत जीवन की समृद्धि को प्राप्त कर सकें। श्रोताओं, नबी यिर्मयाह के ग्रंथ से लिया गया आज का पहला पाठ हमारा ध्यान इस ओर इंगित कराता है कि हम अपने जीवन में किस पर भरोसा करते हैं। इस तरह नबी के वचनों में हम उन व्यक्तियों के लिए धिक्कार के शब्द सुनते हैं जो मनुष्य पर भरोसा करते हैं। वहीं वे मनुष्य धन्य हैं जिनका भरोसा ईश्वर पर बना रहता है। मनुष्य पर भरोसा करने का तात्पर्य हमारे लिए और कुछ नहीं बल्कि उस धन संपत्ति पर हमारी आस्था से है जिसके द्वारा हम अपने जीवन में जरूरत की चीजों को सुलभ हासिल कर सकते हैं। यह धन दौलत मानव के शक्ति सामर्थ्य बलशाली होने पर हमारे विश्वास को व्यक्त करता है जिस पर हम आधारित रहते हैं, जिसके द्वारा हमारे जीवन की मन चाही दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। श्रोताओं, इस तरह दुनियावी रूप में हमारा शक्तिशाली होना हमें एक तरह से स्वयं में आत्मनिर्भर बना देता है। अपनी इस आत्मनिर्भरता में हम स्वयं अपने पर अधिक भरोसा करते और ईश्वर को अपने से दूर कर लेते हैं। नबी कहते हैं, ऐसे व्यक्ति का जीवन मरुभूमि के पौधे की भांति होता है जो कभी अच्छे दिन नहीं देखता है। वहीं ईश्वर पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति जल स्रोत के किनारे लगाए हुए वृक्ष की भांति होता है जो सदैव अपने में हरा भरा बना रहता है क्योंकि उसकी जड़ें पानी के पास फैली होती हैं। वे व्यक्ति जो दरिद्र हैं, जिनके पास पर्याप्त धन संपत्ति नहीं है, बहुधा वैसे व्यक्तियों को हम ईश्वर पर अपना भरोसा बनाए रखता पाते हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी चिंताओं को ईश्वर के हवाले कर देते और अपने में चिंता मुक्त जीवन यापन करते हैं। श्रोताओं, यह हमें आज के दूसरे पाठ कुरुंथियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र से संयुक्त करता है जो हमारे लिए मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रिस्त के मृतकों में से जीवित होने की बात कहता है जो ख्रिस्तीय विश्वास का सार है। हमारा विश्वास और भरोसा उस जीवित ईश्वर पर है जो सारी मानव जाति की मुक्ति हेतु पाप के कारण क्रूस पर मरे, दफनाए गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। संत पौलुस स्वयं उस जीवित ईश्वर पर विश्वास करते और उसके जीवित होने की बातों को सुसमाचार स्वरूप घोषित करते हैं। हम मृतकों के ईश्वर पर नहीं बल्कि जीवितों के ईश्वर पर विश्वास करते हैं। इस भांति जीवित ईश्वर पर हमारा विश्वास हमें सभी रूपों में सजीव और जीवित बनाता है। अपने विश्वास के कारण हम जीवन के कठिन परिस्थितियों और मुसीबतों में होने के बावजूद अपने में आंतरिक साहस, आनंद और खुशी का अनुभव करते हैं क्योंकि जीवित ईश्वर हमारे जीवन में जीवन का संचार करते और हमें स्वर्ग राज्य की ओर अग्रसर करते हैं। श्रोताओं, सुसमाचार में यीशु अपने पिता की शिक्षा को विशाल जन समूह के लिए घोषित करते हुए हमें अपने मनोभावों से वाकिफ कराते हैं। उन्होंने अपनी शिक्षा में अपने सुनने वालों हेतु स्वर्ग राज्य के रहस्य को घोषित किया। स्वर्ग का राज्य उनके लिए है जो अपने में दरिद्र हैं, जो भूखे हैं, जो रोते और शोक मनाते हैं, जो ईश्वर पर विश्वास करने के कारण बहिष्कार, अपमान और घृणित समझे जाते हैं। इन सारी अवस्थाओं में हमारे लिए निर्धनता का भाव स्पष्ट है। यीशु धनी थे लेकिन उन्होंने हमारे लिए निर्धनता का चुनाव किया। उन्होंने भूखों को खिलाया, रोते और शोक मनाते लोगों को अपनी सांत्वना प्रदान की। वे अपने पिता में प्रेम के कारण बहिष्कार और अपमान के शिकार हुए। श्रोताओं, यीशु हमें दरिद्रता, शोक, विलाप में बने रहने को नहीं कहते हैं बल्कि वे अपने लोगों को उन परिस्थितियों से बाहर निकालने में मदद करते हुए नया जीवन प्रदान करते हैं। वहीं सुसमाचार के दूसरे भाग में धनियों और समृद्ध लोगों के प्रति हम धिक्कार को पाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि धनी और समृद्ध प्रायः अपने आचार विचार और व्यवहार में अहम और घमंड से भरे पाए जाते हैं। उनमें नम्रता का अभाव होता है जिसके कारण वे दूसरों को ठेस पहुंचाने में बाज नहीं आते हैं। आइए हम माता मरियम से निवेदन करें कि वे हमें अपने बेटे यीशु ख्रिस्त के मनोभावों को जानने और समझने में मदद करें, जिससे हम उन्हें अपने जीवन में धारण कर सकें और अपने विश्वास में पुख्ता बने रहें।
जीवन जिसने दिया ये जीवन है उसका, प्रभु हमारा है जीवन आधार, उसकी कृपा है अनंत अपार। प्रभु हमारा है जीवन आधार, उसकी कृपा है अनंत अपार। वो जीवन दे
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। वैटिकन प्रेस कार्यालय ने शुक्रवार को बतलाया कि पोप फ्रांसिस को हल्का बुखार है और श्वास नली में संक्रमण के इलाज के लिए वे रोम के अगुस्तिनो जेमेली अस्पताल में भर्ती हैं। अस्पताल में भर्ती होने के कारण कलाकारों के जयंती सहित आने वाले दिनों के लिए निर्धारित कार्यक्रमों में बदलाव किया गया है। शुक्रवार को जारी एक बयान में वैटिकन प्रेस कार्यालय के निदेशक मत्तेओ ब्रूनी ने कहा, विगत दिनों ब्रोंकाइटिस के कारण स्थिति बिगड़ने के बाद पोप फ्रांसिस को शुक्रवार की सुबह रोम के अगुस्तिनो जेमेली अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी विशेष जांच की गई है और अस्पताल में उनका औषधीय उपचार शुरू हो गया है। बयान में स्पष्ट किया गया है कि आरंभिक जांच से श्वास नली संक्रमण का पता चला है। उनकी चिकित्सा स्थिति स्थिर है तथा हल्का बुखार है। पत्रकारों के साथ बातचीत में ब्रूनी ने कहा, पोप शांत हैं, वे अच्छे मूड में हैं और उन्होंने कुछ समाचार पत्र पढ़े हैं। पोप के अस्पताल में भर्ती होने के कारण इन दिनों के जयंती कार्यक्रमों में भी बदलाव किए गए हैं। 15 फरवरी से शुरू होने वाले कलाकारों और संस्कृति जगत की जयंती के लिए पौत्र मिस्सा जो रविवार 16 फरवरी को होने वाला है, उसका अनुष्ठान पोप के बदले संस्कृति एवं शिक्षा विभाग के प्रीफेक्ट महामहिम कार्डिनल जोश टोलेंटिनो डी मोंडेका करेंगे। बयान में आगे कहा गया है कि इसके अलावा कलाकारों के साथ मुलाकात जो सोमवार को चिनेचिता में होने वाली थी, पोप की इसमें भाग लेने में असमर्थता के कारण नहीं हो पाएगी। वैटिकन प्रेस कार्यालय ने बताया कि पोप को इलाज हेतु कई प्रकार के जांच से गुजरना होगा और ब्रोंकाइटिस के चल रहे उनके उपचार को भी जारी रखना होगा। पोप फ्रांसिस पिछले कई दिनों से ब्रोंकाइटिस से पीड़ित हैं, जिसे आम दर्शन समारोह के दौरान महसूस किया गया था। उन्होंने पिछले 2 आम दर्शन समारोह में अपनी तैयार धर्म शिक्षा को अपने सहयोगियों से पढ़ने का आग्रह किया था। 6 फरवरी को भी वैटिकन प्रेस कार्यालय ने एक बयान जारी कर बतलाया था कि पोप ब्रोंकाइटिस से पीड़ित हैं और वे संत मार्था स्थित अपने निवास पर ही लोगों से मुलाकात करेंगे। ब्रोंकाइटिस श्वास नली में होने वाली सूजनकारी बीमारी है। कलाकारों और संस्कृति जगत की जयंती रोम में 15 से 18 फरवरी को मनाया जा रहा है। यह जयंती पोप फ्रांसिस द्वारा कला और संस्कृति में पहचाने जाने वाली क्षमता से प्रेरित है। संस्कृति और शिक्षा के लिए परमधम पीठे विभाग के अध्यक्ष कार्डिनल टोलेंटिनो ने बतलाया कि पोप का निमंत्रण उस चेतना को मजबूत करना है कि आशा एक वैश्विक मानवीय अनुभव है जो हर संस्कृति के दिल में धड़कती है और जो समाज की सभी संभावनाएं प्रदान करती है। अमेरिका में यहूदी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति ट्रंप के गजा पर कब्जा करने और उसका पुनर्विकास करने के प्रस्ताव की निंदा करते हुए कहा है कि यह लाखों फिलिस्तीनियों का नैतिक सफाया होगा। न्यूयॉर्क टाइम्स में सैकड़ों अमेरिकी रब्बियों और यहूदी सार्वजनिक हस्तियों द्वारा हस्ताक्षरित संदेश स्पष्ट है। यहूदी लोग जातीय सफाया को नहीं कहते हैं। गजापट्टी में 1.5 साल के विनाश के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गजा पर कब्जा करने और वहां के लगभग 2 मिलियन निवासियों को सामूहिक रूप से निष्कासित करने का प्रस्ताव दिया है।
शुक्रवार 14 फरवरी को संत पापा फ्रांसिस ने स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री श्री रॉबर्ट फीको का स्वागत किया। बाद में उन्होंने राज्य सचिव कार्डिनल पिएत्रो पारोलिन से भी मुलाकात की। वाटिकन प्रेस कार्यालय द्वारा दिए गए बयान अनुसार राज्य सचिवालय में सौहार्दपूर्ण वार्ता के दौरान मजबूत द्विपक्षीय संबंधों के लिए आपसी प्रशंसा व्यक्त की गई और सामाजिक सामंजस्य के पक्ष में प्रतिबद्धता को नवीनीकृत किया गया। इस संदर्भ में मानव विज्ञान के प्रश्न और परिवार एवं शिक्षा से संबंधित मामलों पर विशेष ध्यान दिया गया। यूक्रेन में जारी अस्थिरता और शांति की संभावनाओं के साथ साथ इसराइल और फिलिस्तीन में नाजुक संघर्ष विराम और गाजा में गंभीर मानवीय आपातकाल पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। संत पापा फ्रांसिस और प्रधानमंत्री फीको के साथ मुलाकात लगभग 30 मिनट तक चला। उधर कई महीनों के बाद और वर्तमान युद्ध विराम की वजह से इटली ने गुरुवार शाम 13 फरवरी को गाजा से 14 गंभीर रूप से बीमार बच्चों और उनके परिजनों का स्वागत किया। पवित्र भूमि के उप संरक्षक फादर इब्राहिम फलतास ने इस खबर का स्वागत करते हुए जोर दिया कि इन कठिन दिनों में एकजुटता का यह नया और ठोस कार्य हमें आशा रखने में मदद करता है। फादर फलतास उन लोगों में शामिल थे जो रोम के चंपिनो हवाई अड्डे पर बच्चों और उनके परिजनों का स्वागत करने के लिए मौजूद थे। फादर फलतास ने कहा कि देखभाल की आवश्यकता वाले रोगियों का स्थानांतरण आसान नहीं है और ओंकोलॉजिकल स्थितियों वाले बच्चों का स्थानांतरित करना वास्तव में जटिल हो जाता है। सहायता और देखभाल इन बच्चों के लिए जीवन है जिन्हें अपने भविष्य के लिए सोची समझी और वांछित जीवन योजना का भी अधिकार है। उन्होंने जोर देकर कहा हमें बच्चों को वह लौटाना चाहिए जो युद्ध ने उनसे छीन लिया है, जीवन, स्वास्थ्य, शिक्षा और खेलकूद का अधिकार। उधर पूर्वी लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो में तेजी से बिगड़ती स्थिति ने कथित तौर पर एक गंभीर मानवीय संकट को और बढ़ा दिया है जहां लगभग 350,000 लोग हिंसा से बचने के लिए भाग रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने चेतावनी दी है कि रवांडा समर्थित M23 विद्रोही जो पिछले महीने पूर्वी कांगो के सबसे बड़े शहर गोमा पर कब्जा कर लिया था अब दक्षिण की ओर अपना अभियान जारी रखा है और शुक्रवार को कथित तौर पर रणनीतिक कावुमु हवाई अड्डे पर कब्जा कर लिया। उधर म्यांमार मांडले महाधर्म प्रांत के 44 वर्षीय धर्म प्रांतीय पुरोहित डोनाल्ड मार्टिन देश में रक्तपात मचाने वाले गृह युद्ध में मारे गए पहले बर्मी कैथोलिक पुरोहित हैं। उनका निर्जीव शरीर चाकू के घावों से छत विछत कल 14 फरवरी सुबह कुछ पल्ली वासियों को लूर्द की माता मरियम पल्ली के परिसर में मिला। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।